नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शिक्षा नीति और परिसीमन के मुद्दों पर हंगामे के साथ शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वानुआतू के प्रधानमंत्री ने भगोड़े ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया। भारत ने चीन और जापान से आने वाले जल उपचार रसायनों पर $986 प्रति टन तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दो अलग अलग दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत और 26 घायल। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज संसद के दोनों सदनों में शोर शराबा हुआ। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल को लेकर लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर डीएमके और कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। शोर शराबे के बीच सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद टी सुमति उर्फ थमीझाची थंगा पांडियन ने तमिलनाडु को धन आवंटित करने का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए श्री प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएमके ने पीएम श्री योजना तमिलनाडु में लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके तमिलनाडु के विद्यार्थियों के प्रति वचनबद्ध नहीं है और वो उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग फाइनेंशियल एलोकेशन टू पीएम पोर्शन। दे आर डिजोनेस्ट, दे आर नॉट कमिटेड टू तमिलनाडु स्टूडेंट्स, दे आर रुइनिंग द फ्यूचर ऑफ तमिलनाडु स्टूडेंट्स। देयर ओनली जॉब इज टू रेज लैंग्वेज पैशन, दे आर डूइंग पॉलिटिक्स।
श्री प्रधान की टिप्पणी के बाद डीएमके और कांग्रेस के सदस्य हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक जैसे ही फिर शुरू हुई तो डीएमके सांसद कणेमोझी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि डीएमके को त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर तमिलनाडु के लोगों के प्रति आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। उन्होंने इस्तेमाल किए गए अपने कुछ शब्द वापस भी लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए दूसरे चरण की अनुपूरक अनुदान मांग पेश की। उन्होंने सदन में वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर से संबंधित बजट भी पेश किया। राज्यसभा में सदन की बैठक आज सुबह जैसे ही शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने दक्षिणी राज्यों में परिसीमन के मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों के स्थगन नोटिस पेश करने की अनुमति नहीं दी। विपक्षी दलों ने कथित डुप्लीकेट मतदाता पहचान संख्या और अन्य मुद्दों को लेकर स्थगन का नोटिस देने का प्रयास किया था। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य दलों के सदस्य इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने सदस्यों से अपील की कि वे अपनी सीटों पर वापस चले जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। बाद में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्यों ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे सदन से वॉकआउट करके गैर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। अब चलते हैं अपने संवाददाता दिवाकर के पास। दिवाकर, आज बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन है, सदन की कार्यवाही कैसी रही, क्या जानकारी है आपके पास?
जी कनक, आज पहले दिन ही लोकसभा में हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के मुद्दे पर हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके के एक सांसद ने तमिलनाडु को पीएम श्री योजना से संबंधित धनराशि नहीं जारी करने पर केंद्र सरकार से सवाल कर रही थी, और इसी दौरान जब शिक्षा मंत्री उनका जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है, जिससे धनराशि जारी होने में देरी होगी। जब मंत्री बोल रहे थे तो डीएमके के सदस्यों ने हंगामा किया और केंद्रीय मंत्री के कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, और इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान इससे पहले सदन में पुरातत्व स्थलों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े कुछ सवाल किए गए जिसपे संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर से संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांग पेश की। आपको पता है कि मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन है, इसलिए ये जो है अनुपूरक मांग यहाँ लोकसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में सुबह में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने डुप्लीकेट मतदान पहचान पत्र नंबर जारी करने और अन्य मुद्दों पर शोरगुल किया।
जानकारी के लिए धन्यवाद दिवाकर। दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस में 12 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मॉरिशस को 12 मार्च 1968 में ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी, इसलिए हर वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। आज मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में नेशनल डे के मौके पर होने वाली परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। इस परेड में भारतीय मार्चिंग दस्ता भी शामिल होगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना का एक शिप भी इस मौके पर मॉरिशस पहुंच रहा है। साथ ही भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी इस परेड में भाग लेगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, मॉरिशस।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को दिए विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के बारे में जानकारी दी।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर 11-12 मार्च को जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है मॉरिशस का 12 मार्च को जो नेशनल डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इसके अलावे इस स्टेट विजिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री और वहां के अन्य विशिष्ट गण उनसे बातचीत होगी। इस प्रोग्राम का, उनके दौरे का एक विशेष पहलू रहेगा कि वहां पर जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनसे उनकी वार्तालाप होगी।
मॉरिशस, जहां आधी से ज्यादा आबादी की जुबान है भोजपुरी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वहां। इस दौरे से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भोजपुरी में होगी बातचीत, जिसका प्रसारण आप सुन सकेंगे 8:15 पर पटना, सासाराम, वाराणसी, गोरखपुर और ओबरा के आकाशवाणी केंद्रों से।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
ओए, बधाई हो, बिटिया हुई है।
मुबारक हो दीदी, बेटी का मेडिकल में एडमिशन हो गया।
सीना चौड़ा हो गया, अपनी लड़की अब सैनिक स्कूल में पढ़ेगी, कल को देश की रक्षा करेगी।
भारत की नारी हर रोज महिला दिवस है मनाती। आज देश में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। आज साइंस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स में से लगभग आधी तो अपनी लड़कियां हैं। अब तो सैनिक स्कूल और एनडीए के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुल गए हैं। सही कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है।
मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर देश की सभी बेटियों को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई।
सर्वे संतु निरामया।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने देश के नागरिकता आयोग को आदेश दिया है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख भगोड़े ललित मोदी को जारी किया गया वानुआतू पासपोर्ट रद्द करे। एक रिपोर्ट।
ये निर्णय ललित मोदी के बारे में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के खुलासे के बाद किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि ललित मोदी ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा कराने के लिए आवेदन किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके अनुरोध की समीक्षा मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत अपने कानून के अनुसार ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। ललित मोदी आईपीएल प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन के आरोप में भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित है। ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया और तब से वह लंदन में रह रहा है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
भारत ने चीन और जापान से आयात होने वाले जल उपचार में प्रयुक्त रसायनों पर 5 साल के लिए 986 अमरीकी डॉलर प्रति टन तक का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। यह कदम घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के बाद लिया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गए। इनमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ। घायलों को इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक के पलट जाने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्रक में करीब 17 मजदूर सवार थे। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक पलट गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाला मामले में 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। यह अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत चलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे और करीबी सहयोगियों के आवासों की तलाशी ली जा रही है। ये घोटाला विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गबन किए गए कुल 2000 करोड़ रुपए से संबंधित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के निदेशक निशांत कुमार और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता के साथ चर्चा प्रसारित की जाएगी। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112342100 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। कंबोडिया के सीएम रीप क्षेत्र में आज तीसरा भारत कंबोडिया विदेश कार्यालय विचार विमर्श आयोजित किया गया। इसमें राजनीतिक सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा, विकास सहायता, विरासत संरक्षण और जीर्णोद्धार तथा वाणिज्यिक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारतीय मौसम विभाग ने आज कोंकण, गोवा और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ सोमा सेन रॉय ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज तेज बारिश हो सकती है।
इस पश्चिम विक्षोभ काफी पीछे है मगर उसके इफेक्ट आज से शुरू हो गए हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और खासकर आज रात से लेकर कल सुबह तक बारिश का मात्रा और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ने का संभावना है। मेनली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्लेन्स में ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा मगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी राज्यों में। जैसे ये पश्चिम विक्षोभ आगे आएगी तो 13-14 तारीख को बारिश दोबारा बढ़ेगी आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसके चलते भारी वर्षा होने की संभावना है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है पूरा नॉर्थ इंडिया में।
महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट से होगा। मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई और गुजरात दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। आज के मैच में टूर्नामेंट के पहले फाइनलिस्ट का निर्धारण हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शिक्षा नीति और परिसीमन के मुद्दों पर हंगामे के साथ शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वानुआतू के प्रधानमंत्री ने भगोड़े ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया। भारत ने चीन और जापान से आने वाले जल उपचार रसायनों पर 986 डॉलर प्रति टन तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत और 26 घायल और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।